भजन संहिता 115, भजन 115 पद 1। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा। यहां फिर वही विचार, मुझे महिमा ना दो। हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा, तेरी महिमा आदर और भय से होती रहे। भजन 115 पद 1 और 2। अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहां रहा। बहुत बार लोग कहते हैं, तुम्हारा परमेश्वर कहां था, उस समय तुम्हारे परमेश्वर को क्या हो गया था। अन्य जाति के लोग क्यों कहने पाए कि अब तुम्हारा परमेश्वर कहां है। भजन 115 पद 3। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। मुझे याद रखना चाहिए, उसने जो चाहा वही किया है। मुझे चाहे अच्छा ना लगा हो, परंतु क्या यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। यहां फिर अन्य जातियों और उनकी मूर्तियों के बारे में, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, वो राज्य करता है, परंतु भजन 115 पद 4 से लेकर 8 तक, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पाँव तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। यहां मूर्तियों के बारे में भजनकार ने एक विचार प्रस्तुत किया है। ये बहुत ही गहरा विचार है। सबसे पहली बात जो वो देखता है वो ये है कि मनुष्य स्वभाव ही से ऐसा है कि उसे कोई ना कोई प्रतिमा चाहिए। मनुष्य में भीतर से आराधना करने की इच्छा रहती है कि किसी की आराधना करे। मनुष्य ने अपने देवता बना लिए, परंतु जब मनुष्य स्वयं देवता बनाता है तो वो उन्हें अपनी तरह ही बनाता है, ताकि मेरा ईश्वर मेरे ही समान दिखाई दे। इसलिए सच में मैं स्वयं की आराधना करता हूं, क्योंकि उसने देखा जब वे अपने ईश्वर को बनाते हैं तब वे उसका मुंह बनाते, उसकी आंख बनाते हैं, उसके कान बनाते हैं, उसके हाथ और पांव बनाते हैं। क्यों? तुमने क्यों देवता के हाथ बनाए? क्योंकि तुम्हारे हाथ है। तुमने उसके कान क्यों बनाए? क्योंकि तुम्हारे पास कान है। जब हम न्यू गिनी में थे, वहां एक जनजाति है, उनके क्लूहे की एक हड्डी जन्म से ही अपने जोड़ से हटी होती है, जिसके कारण उनके दाहिने पैर बाएं पैर से छोटे होते हैं। अब चूंकि मनुष्य अपने समान ही अपने ईश्वर को बनाता है, उन्होंने अपने देवता के दाहिने पैर भी थोड़े छोटे बनाए हैं। इसे ईश्वर का मानव स्वरूप कहते हैं। मनुष्य परमेश्वर को अपने रूप में दर्शाना चाहता है, परंतु भजनकार ने देखा कि चाहे मनुष्य ने अपना ईश्वर अपने समान बनाया हो, उसने उसे अपने से कम बनाया है, क्योंकि उसने उसकी आंखें तो बनाई है, परंतु वो देख नहीं सकता। चाहे उसने उसके पैर बनाए हैं, वो चल नहीं सकता। चाहे उसने उसके हाथ बनाए हैं, वो छू नहीं सकता। चाहे उसने उसके कान बनाए हैं, वो सुन नहीं सकता। चाहे उसने उसका मुंह बनाया है, वो बोल नहीं सकता। इसलिए मनुष्य ने अपने ईश्वर को अपने समान बनाया, परंतु वास्तव में मनुष्य ने अपने ईश्वर को स्वयं से कम बनाया है। भजनकार अंत में देखता है कि जिसने उन्हें बनाया है वो भी उसी के समान हो जाएंगे, या मनुष्य अपने ईश्वर की तरह हो जाता है। ये जीवन का एक सत्य है जिससे आप बच नहीं सकते। आप अपने ईश्वर की तरह होते जाते हैं, मनुष्य अपने ईश्वर की तरह हो जाता है। यदि मैंने अपना ईश्वर स्वयं बनाया है, परंतु मैंने अपना ईश्वर अपने से कम बनाया है, तब उस ईश्वर को जिसे मैंने बनाया है आराधना करने से मैं स्वयं को उससे नीचे दिखाता हूं, और इस प्रकार जो मैं हूं उससे मैं नीचे हो जाता हूं, क्योंकि मैं अपने ईश्वर की तरह हो जाता हूं और वो मुझसे कम है क्योंकि मैंने उसे अपने से कम बनाया है। इसलिए मेरा ईश्वर संज्ञाहीन है, वो महसूस नहीं करता, मैं उसका हाथ नहीं देख सकता, मैं उसकी आवाज नहीं सुन पाता। मैं अपने ही बनाए हुए छोटे ईश्वर की तरह चेतनहीन हो गया, क्योंकि मनुष्य अपने ईश्वर की तरह हो जाता है। मैं अपने ईश्वर की तरह जो मैंने बनाया संज्ञाहीन हो गया। यदि आपका ईश्वर झूठा है तो आप भी झूठे होंगे, यदि आपका ईश्वर कठोर है तो आप भी कठोर होंगे। मनुष्य अपने ईश्वर की तरह हो जाता है। ये संसार का सबसे बड़ा श्राप होता, अथवा ये सबसे बड़ा आशीष का कारण होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ईश्वर कौन है। पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आप सब जानते हैं कि मनुष्य अपने ईश्वर की तरह हो जाता है। 2 कुरिन्थियों 3:18। हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। मैं प्रतिदिन अपने परमेश्वर की तरह होता जाता हूं। यदि मैं सच्चे और जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं, ये कैसी महान बात है, तो मैं हर दिन उसकी समानता में बदलता जाता हूं। मनुष्य अपने ईश्वर की समानता में हो जाता है। नया नियम हमें बताता है हम परमेश्वर की संतान हैं। ये अब तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, पर जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। इसलिए वास्तव में एक तरफ मनुष्य अपने समान ईश्वर बनाता, परंतु अपने से बहुत कम। इस तरह मनुष्य अपने आप को नीचा दिखाता है जब वो उसकी आराधना करता है। दूसरी तरफ एक परमेश्वर है जो मनुष्य को उससे भी अधिक अच्छा बनाता है, मनुष्य की योग्यता से अधिक है, और इसलिए सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना सदा ऊपर उठाने वाला अनुभव है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपनी समानता में बनाया है। क्या मैंने अपने ईश्वर को अपनी समानता में बनाया है, या परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता में बनाया है? आप दो में से एक है, या तो आप ऊपर के मार्ग पर है या आप नीचे के मार्ग पर है। हरेक मनुष्य का एक ईश्वर होता है। उस मनुष्य पर विश्वास मत करो जो कहता है मैं नास्तिक हूं, क्योंकि परमेश्वर एक उपाधि है, और ये उपाधि वो है जो मनुष्य का प्रमुख मनोवेश होता है। यही उसके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत होता है, और वो उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। मोलेक उनका ईश्वर है। हो सकता है कि उनका पूरा जीवन पद प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्ति में लगा हो। धन भी किसी का ईश्वर हो सकता है, किसी का ईश्वर बाल देवता हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि सबके अपने अपने देवता होते हैं और वो ठीक उन्हीं को समर्पित होता है। वो किसी काम के न हो परंतु है तो ईश्वर। कितना भला है सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करना, जिसको मैंने अपने मन से स्वयं नहीं रचा, जो मेरी कल्पना नहीं परंतु वो परमेश्वर जो स्वयं से हम पर प्रकट हुआ। ऐसे सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करना क्या ही उत्तम बात है। इस प्रकार हम अन्य जातियों और उन देवताओं के बारे में भजनकार के उस रोचक वर्णन को देखते हैं। भजन 115 पद 9 से लेकर 12 तक। हे इसराइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवियों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है। यहां फिर से विचारों का समावेश देखने को मिलता है। वो इसराइल और हारून के घराने को आशीष देगा। ये इब्रानी कविता में विचारों का एक मिश्रण है। भजन 115 पद 12 से लेकर 13 तक। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा। वो इसराइल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवे हैं वे उन्हें आशीष देगा। मिश्रित विचार आशीष के शब्दों के साथ है। भजन 115 पद 14 से लेकर 16 तक। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसी की ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। स्वर्ग तो प्रभु का है, परंतु परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी है। परंतु मनुष्य ने इसे शैतान को दे दिया, और पृथ्वी शैतान के हाथ में है। परंतु यीशु मसीह पृथ्वी को परमेश्वर के लिए छुड़ाने आया, और ज्यादा देर न होगी कि वो उसे ले लेगा। इसका दावा करेगा जो उसने खरीदी है। मैं इस समय की प्रतीक्षा ही नहीं कर पा रहा हूं। भजन 115 पद 17। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो या की स्तुति नहीं कर सकते। ये प्राण की मृत्यु का प्रमाण है। इसका अध्ययन हम सभा उपदेशक की पुस्तक में करेंगे, जहां वचन निश्चित तौर पर बताता है कि वहां चेतना है। ये भजनकार के अपने मन के विचार है, जो आयुब की तरह है, जहां परमेश्वर कहता है, तू क्या जानता है, तू मृत्यु के प्रति क्या कह रहा है, तू नरक के दरवाजों के पीछे नहीं गया, तू नहीं जानता कि वहां क्या है, और तू अपने दिमाग से बोलता है। इसलिए यहां भजनकार उन चीजों के बारे में कहता है जो वचन के अनुसार नहीं है, अर्थात मसीह के वचन जो मृतकों के बारे में बताता है। भजन 115 पद 18। परंतु हम लोग या को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, या की स्तुति करो। परमेश्वर आपके साथ हो और आपको अपने प्रेम से भर दे और आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर आपको विधर्म से और बड़े बोल से बचाए। आप ना तो परमेश्वर को निहारना छोड़े और ना ही आत्मा के कार्य त्यागे, वरन अधिकाधिक आत्मिक होते जाएं। हम आत्मा में चले ताकि हम शरीर की अभिलाषा पूरी करने के अपराधी ना ठहरे। प्रभु आपके साथ हो और मसीह यीशु के प्रेम में आपको बनाए रखें। आमीन।